hare 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 ramo hare ramo 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
स्तोत्र सुथिस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की
ओ भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
हम भगवद गीता से पढ़ेंगे 18वां अध्याय श्लोक नंबर 58 मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अतचित्त्वं अहंकारं न श्रोष्यसि विनक्षसि यद् अहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैस्य व्यवसायस्ते प्रकृति स्वामी योग सुती। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि अवशोऽपि तत्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो। यदि तुम मुझसे भावना भवित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने स्वभावश युद्ध में लगना होगा। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देश अनुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। प्रभुपाद जी का तात्पर्य, पूर्ण कृष्ण भावना भवित व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य करने के विषय में आवश्यकता से अधिक उद्विग्न नहीं रहता। जो मूर्ख है वह समस्त चिंताओं से मुक्त कैसे रहे इस बात को नहीं समझ सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है भगवान कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। वे सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं और जो मित्र 24 घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य में लगा रहता है वे उसको आत्मदान कर देते हैं। अतएव किसी को देहात्म बुद्धि के मिथ्या अहंकार में नहीं बह जाना चाहिए। उसे झूठे ही यह नहीं सोचना चाहिए कि वह प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र है या कर्म करने के लिए मुक्त है। वह पहले से कठोर भौतिक नियमों के अधीन है, लेकिन जैसे ही वह कृष्ण भावना भवित होकर कर्म करता है तो वह भौतिक दुष्टताओं से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को यह भलीभांति जान लेना चाहिए कि जो कृष्ण भावनामृत से सक्रिय नहीं है वह जन्म मृत्यु रूपी सागर के ही भंवर में पड़कर अपना विनाश कर रहा है। कोई भी बुद्धिबद्ध जीव यह सही नहीं जानता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन जब व्यक्ति कृष्ण भावना भवित होकर कर्म अंतर से करता है वह कर्म करने के लिए मुक्त है, क्योंकि प्रत्येक किया हुआ कर्म कृष्ण द्वारा प्रेरित तथा गुरु द्वारा पुष्ट होता है।
ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतये स्वयं लोकार्थदा वैद्यं ददाति स्वप्रान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विता। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि भक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
मच्चित्ता सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् करिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारान् न श्नोष्यसि विनश्यसि।
तो ये गीता का निष्कर्ष है। श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान पूर्णतया वर्णन किया हुआ है और ऐसा लग रहा है कि श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को धमकी दे रहे हैं। जबरदस्ती से वो कह रहे कि अगर आप मैं जिस प्रकार से कह रहा हूं इन वचनों का पालन नहीं करोगे। पहले कृष्ण ने कहा कि आपको स्वतंत्रता है, जैसे आप चाहते हो वैसे आप कर सकते हो, परंतु जब आप अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करोगे तो भगवान क्या कर रहे हैं, उनको भविष्य के बारे में बता रहे हैं कि क्या होगा अगर आप मेरे वचनों को नहीं सुनोगे। अहंकार के कारण जब कृष्ण के बातों को नहीं सुनोगे, मेरे बातों को नहीं सुनोगे, तो आपका नाश होगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति के कारण आप विवश हो और इस विवशता के कारण आपको अपने स्वभाव के अनुसार कर्तव्य करना ही होगा। श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका के एक शहर में प्रवचन कर रहे थे और दो तरुण मंदिर के अंदर प्रवेश किए। उसमें से एक अकड़कर खड़ा था, सावधान, जैसे आर्मी में सावधान बोलने पर खड़े हो जाते अकड़कर, वैसे खड़े हो गया। जब कभी कभी लोग मंदिर में आते हैं वो भगवान से डिफेंसिव हो जाते हैं, अभी झुकना होगा तो इसलिए टाइट बन जाते हैं, झुकना नहीं चाहते। आपने देखा होगा ये फिजियोनॉमी कहते हैं, हम देखते रहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने देख लिया उसको, एक क्या हो गया, वो डिफेंसिव हो गया, वो समझ गया मंदिर में आना है, भगवान है, संत लोग हैं, उनको झुकना होगा, वो झुकना नहीं चाहते थे। और दूसरा स्वाभाविक नेचुरली क्या किया उन्होंने, पूरा नीचे झुक गया और प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे। प्रभुपाद जी ने कहा या प्रेम से झुको या जबरदस्ती से मृत्यु के समय झुकना होगा, परंतु झुकने से आप बचा नहीं सकते हो, प्रणाम करना ही होगा। तो इसलिए आध्यात्मिक शास्त्र दोनों प्रकार से ज्ञान देते हैं, वैदिक शास्त्र, शास्त्र और शस्त्र उसी शब्द से आते हैं। हम देखते हैं जिस समय वैदिक संस्कृति, युधिष्ठिर महाराज के समय जो वैदिक संस्कृति थी, परीक्षित महाराज के समय जो वैदिक संस्कृति थी, वो दो लोगों के कारण, एक तो राजा जो राजर्षि हुआ करते थे और जो संत जो देवर्षि हुआ करते थे, ये दोनों के समन्वय के कारण लोग भक्ति में रुचि रखते थे, आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि रखते थे। आज केवल ज्ञान बच गया है, शास्त्र है, परंतु वो भी ठीक से बताने वाले नहीं है और नियम नहीं है, और इसके कारण लोग चुनौती देते हैं, क्यों करनी है भक्ति, हमें दूसरा और चीज करने के लिए बहुत है, किसी का डर नहीं है। ये जीव का स्वभाव है, ये बद्ध जीव का स्वभाव है कि इतने सारे योनियों को भ्रमण करते करते जब उसको मनुष्य शरीर मिल जाती है, मां के गर्भ में जबरदस्ती से वो प्रार्थना करता है। शास्त्र कहता है, शास्त्र कहती है कि इतना, श्रील प्रभुपाद जी कहते जस्ट इमेजिन एयर टाइट बैग के समान, अगर हम में से किसी को जो बड़ा बलून है उसमें बंद कर दिया जाए टाइटली, क्या हम जीवित रहेंगे? नहीं रह पाएंगे। बलून के अंदर इतना बड़ा बलून लिया और उसमें हमें घुसा दिया और टाइटली बंद कर दिया और लटका दिया ऊपर, हम देख सकते हैं कि कैसे श्वास बंद होकर हम मर जाएंगे। तो प्रभुपाद जी कहते कि देखो मां का जो गर्भ है वो एयर टाइट बलून के समान है, तो वहां कितना कष्ट होता है, लेकिन फिर भी भगवान की असीम कृपा से व्यक्ति मरता नहीं, शिशु बालक वो जीव मर नहीं जाता, वो जीवित रहता है। और उस अवस्था में कष्ट के कारण, खेद के कारण, दुख के कारण, जबरदस्ती के कारण वो प्रार्थना ही करता है। हम कहेंगे ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं शास्त्र में, वैज्ञानिक किताबों में, परंतु अंधकार के कारण, भ्रम के कारण उसको भूल गए। जैसे हम देखते हैं लोग कुछ बिजनेस डील करते हैं, कुछ किताब में लिखते नहीं है, केवल शब्दों से करते हैं, फिर एक की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसको लगता है कि इसको धोखा देना चाहिए। वो क्या कहेगा, मुझे याद नहीं ऐसे मैंने कभी कहा ही नहीं। भ्रम के कारण, पाप के कारण, धोखा देने के कारण जो उसने वचन दिया है वो कहते हैं कि मैं जानता नहीं हूं, ऐसा कभी मैंने कहा ही नहीं। तो वैसे जो मां के गर्भ में वचन देता है कि मैं कृष्ण की ही सेवा करूंगा, लेकिन जैसे बाहर आ गया फिर कहता मैंने ऐसा कभी कहा ही नहीं है, वो तो क्या भगवान का अस्तित्व ही नहीं है। तो इसीलिए यहां शास्त्र जो स्क्रिप्चर्स है वो कभी कभी ऐसे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अगर नहीं सुनोगे, पहले अर्जुन को भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा हो यथेच्छसी तथा करो, एज यू प्लीज एज यू डिजायर, परंतु अब क्या कह रहे हैं, अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, नाश पाओगे। इसलिए शास्त्र में कहा गया है डर जो फियर है ये भक्ति का पहला स्तर है, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। क्योंकि बद्ध जीव ऐसे सुनता नहीं है, जब तक माया का लात नहीं खाता तब तक उसमें परिवर्तन नहीं आता। बार बार माया के लातों को खाकर जब समझ जाता कि अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं, मेरे शक्ति से मैं बच नहीं सकता हूं, तो फिर जितने भी मंदिर है सब मंदिर भटकने लगता है अपने दुखों को दूर करने के लिए। जैसे रामायण में पढ़ते हैं, सुग्रीव अपने भाई वाली के साथ द्वेष होने के कारण, वाली शक्तिशाली थे उन्होंने उनको भगा दिया। सुग्रीव जंगल में निवास कर रहे थे अपने मित्रों के साथ, और वहां भगवान रामचंद्र जी सीता के साथ लक्ष्मण के साथ प्रवेश करते हैं। सुग्रीव डर गया, उसको लगा कि ये भी वाली का कोई मित्र है, हनुमान जी को भेजते हैं। हनुमान जी आकर जान जाते कि वाली का मित्र नहीं है और ये सुग्रीव को मदद कर सकते हैं, और वो सुग्रीव के पास लेकर आते हैं, और सुग्रीव जान गए कि राम भी मेरे जैसे स्थिति में है, उनका भी राज्य खो गया है, उनकी भी पत्नी खो गई है। जब दोनों दुख वैसा ही होता है फिर मित्र बन जाते, लेकिन ऐसी नहीं है। भगवान रामचंद्र कोई साधारण जीव नहीं है, वो भगवान है, लेकिन यहां ऐसे स्थिति उन्होंने स्थापित उपस्थित कर दिया। तो सुग्रीव को लगा कि वो भी अपने पत्नी से वंचित है, उनके पत्नी को वाली ने हरण किया था, उनके राज्य को वाली ने हरण किया था, राम जी का भी राज्य नहीं था। तो भगवान रामचंद्र जी ने कहा ठीक है मैं आपको मदद करता हूं और आप मुझे मदद करना। तो वाली को भगवान मार देते हैं, सुग्रीव राजा बन गए, भगवान रामचंद्र जी चतुर्मास करने लगे। 4 महीने हो गए, सुग्रीव ने वचन दिया था कि मैं आपको जरूर मदद करूंगा सीता के शोध में, लेकिन इंद्रिय भोग के कारण अभी एक ने उसके 2 पत्नियां हो गई, उसकी खुद की पत्नी और वाली की पत्नी भी उसकी पत्नी हो गई, राज्य भी मिल गया, सिंहासन मिल गया, और राज्य के साथ बहुत सारे सुविधाएं मिल गई। ये जीव का और एक दुर्भाग्य है, अगर उसे कुछ पोजीशन मिल जाता है, इसे हम 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं, हमारे अधिकार और हमारा कर्तव्य, हर एक जीव को 2 चीजें आती है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैसिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सुविधाएं और उत्तरदायित्व। अगर कोई राजा बन गया तो उसके लिए क्या हो गया, अपने आप सारे सुविधाएं आ जाती है, उसको राजभोग खाना ही पड़ता है। जैसे कहा जाता है कि राजभोग यानी कि क्या, भगवान को भोग लगाया जाता है राजभोग दोपहर के समय, तो उस समय बहुत सारे भोग पदार्थ ही होते हैं अलग अलग प्रकार, 16 सब्जी, 12 स्वीट, बहुत सारे जूस। सोचेंगे राजा बनना अच्छा है तो ऐसे 56 भोग राजा को खिलाया जाता है। अगर राजा नहीं भी खाएंगे, एक प्रथा है, उनके सामने इतने सारे पदार्थों को रखा जाता है, उसमें से वो थोड़ा ही खाएगा लेकिन फिर भी ये प्रथा है, यानी कि उसके लिए फैसिलिटीज है, परंतु केवल सुविधाओं के बारे में ध्यान रखोगे और अपने कर्तव्यों को भूल जाओगे, फिर राजा को भिखारी बनना पड़ता है थोड़े ही दिन में। तो सुग्रीव राजा बन गए, बहुत सारे फैसिलिटीज मिल गए उनको, परंतु अपने कर्तव्यों को भूल गए। चार महीने हो गए वो बाहर निकले ही नहीं, अपने सैनिकों को नहीं भेजा सब दिशाओं में भगवान रामचंद्र सीता के खोज में। तो यहां रामचंद्र जी का व्रत समाप्त हो गया। रामचंद्र जी एक ऐसे व्यक्ति है वो हमेशा के लिए शांत रहते हैं। आयुर्वेदिक में कहा गया है जो ग्रीन कलर एक कूलिंग है, मैं हमेशा शांत करता है। भगवान रामचंद्र जी ध्रुवा ग्रास जो है उसका समान उनका कलर, हमेशा शांत रहते, कभी वो क्रोध में नहीं आते। एक ही बार आए थे जब वरुण उनको मार नहीं दे रहा था, तो फिर वो लाल लाल बन गए, उनका कलर बदल गया। लेकिन लक्ष्मण वो हमेशा गर्म हो जाते हैं भगवान रामचंद्र जी की सेवा में। उन्होंने देखा कि चार महीने हो गए रामचंद्र जी सीता के अनुपस्थिति में, ये भगवान की लीला है, भगवान कभी अपने भक्तों से बिछुड़ नहीं जाते। सीता कोई साधारण नहीं है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है, परंतु लीला भगवान कर रहे। तो लक्ष्मण ने देखा कि सुग्रीव से कोई समाचार नहीं आया, तो उनके आंखें लाल हो गए और वो निकले कहां सुग्रीव के स्थान पर, अपना तलवार लेकर धनुष बाण लेकर। उनके हर एक जो पैर है स्टेप्स है वो मदहंड हाथी के समान था, ऐसा लग रहा था कि पूरे किष्किंधा क्षेत्र को नाश कर देंगे। गर्जना कर रहे थे जोर जोर से, और जैसे सुग्रीव के सैनिकों ने देखा भागे जोर से सुग्रीव को बताने के लिए। और सुग्रीव क्या कर रहे थे, शराब पीकर है तो बंदर, केवल भगवान रामचंद्र जी ने उनको भक्त बनाया, तो पूरे मदमत होकर भोग में लगे हुए थे, अपने कर्तव्यों को भूल गए। तो इसलिए जब जीव को सारे सुविधा दी जाती है, 84 लक्ष योनियां है, लेकिन हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। कहा जाता है कि मनुष्य योनि को प्राप्त करने के लिए ये भारत का प्रधानमंत्री बन जाओगे किसी न किसी प्रकार से। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा जाता है कि अगर आपको दूसरा कोई करने नहीं आता, अगर डॉक्टर नहीं बन पाओगे, इंजीनियर बन पाओगे, अगर कुछ बिजनेस नहीं कर पाओगे, तो क्या बन जाओ, भारत का राजकारणी बन जाओ। देखते देखते प्रगति करोगे, प्रधानमंत्री बन सकते हो, वो बन सकते हो, परंतु मनुष्य शरीर को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है। और मनुष्य योनि में सुविधाएं है, पुरुष स्त्री को भी पुरुष कहा गया है, पुरुष को भी पुरुष कहा है, जानवरों को पुरुष नहीं कहा गया। पुरुष यानी कि क्या, ईश यानी कि स्वामी राजा, जो शरीर का राजा है, इस शरीर में बहुत सारे सुविधाएं है, वो सुविधाओं को भोगने वाला वो पुरुष है। यानी कि मनुष्य शरीर मिलने से कुछ सुविधाएं मिल जाती है, फैसिलिटीज मिल जाती है, लेकिन साथ साथ उसके कई कर्तव्य है। अगर केवल सुविधाओं के बारे में लक्ष्य रखकर अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, फिर लक्ष्मण जी आ जाते हैं प्रकृति के रूप में, त्रिताप के रूप में, और दंड देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब लक्ष्मण इतने क्रोधित होकर सुग्रीव के ऊपर आग बबूला होकर जोर जोर से गर्जना करने लगे, सुग्रीव की होश उड़ गई, भागकर आए, बोले इतना गुस्सा मत करो, अपने पत्नियों को आगे रखा, जानते थे कि क्षत्रिय राजा कभी स्त्रियों के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, और उनसे क्षमा मांगने लगे और तुरंत तैयार हो गए अपनी सेवा करने के लिए। इसलिए जीवों को आध्यात्मिक जीवन आने के लिए शास्त्र दोनों करते हैं, प्रेम से भी समझाते हैं और जबरदस्ती भी करते हैं। इन दोनों का समन्वय होने से जीव भक्ति में लग जाता है। नहीं तो स्वाभाविक बद्ध जीव होने के कारण उसका लक्ष्य केवल भोग में चला जाता है, भोग करना, इंद्रिय भोग करना, बाद में भक्ति करेंगे, दीर्घ सूत्री प्रोक्रेस्टिनेशन, आगे करेंगे बाद में करेंगे, तो शरीर जर्जरित हो जाता है, हरिनाम नहीं निकलता। बुढ़ापा में हरिनाम लेना कोई साधारण चीज नहीं है। नींद ज्यादा और जब कम, हम कितने बार देखते हैं मंदिर में कभी वृद्ध लोग आते हैं उनको प्रसाद खाते समय नींद आ जाती है। देखो खाते समय कोई सोता नहीं है, खाते समय लोगों की नींद उड़ जाती है, लेकिन वृद्धावस्था ऐसी है अच्छा भोजन भी रखो, उस शरीर के स्वभाव के कारण हमने कितने बार देखा है खाते खाते वो सो जाते हैं। खाने में रुचि है फिर जप में तो कहना ही क्या है, जप करते करते माला निकल जाती है, बीड बैग निकल जाता है, दिव्य भाव में विभोर होकर चले जाते हैं। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा, इसकी हम चर्चा कर रहे थे, नियमित प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक ये स्वभाव नहीं बनेगा हरि नाम लेने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जाने की जबरदस्ती करते हुए जो शास्त्र और शस्त्र क्षत्रियगण वैसे नियम बनाते हैं, नहीं तो जीव में स्वाभाविक इच्छा है भोग करने के लिए। जैसे एक कहानी आती है, मैंने पहले ही सुनाया था इसको, बहुत सुंदर कहानी है। एक द्वीप था, वो विचित्र द्वीप था। उस द्वीप का राजा जो बन जाता था, नियम ऐसा था कि केवल एक साल के लिए राजा बनेगा, केवल एक साल, और एक साल के बाद उस राजा को गड़ी पार किया जाता था, जैसे कि अंडमान निकोबार भेज दिया, निर्जन प्रदेश में उसको गड़ी पार किया जाता था, और वहां पानी, बिना पानी के, बिना खाने के, जल्दी ही जो राजा था वो फिर मर जाता था। तो काफी लोग राजा बनते थे, सोचते थे चलो एक ही साल जीना है तो खूब भोग करो, तो भोग करते थे, फिर देखते देखते इस साल खत्म हो गया, उनको गड़ी पार किया, फिर वो देखते थे इतने सारे हड्डी गिरे हुए हैं पिछले राजा उनके, वो सोचते ही एक साल के बदले में 6 महीने में मर जाते थे। तो फिर एक गुलाम था, एक जमींदार के पास वो काम कर रहा था, एक गुलाम, तो जमींदार ने उसको कह दिया कि मैं आपको मुक्त कर दे रहा हूं, यू आर लिबरेटेड, आप चले जाओ, आपके लिए मैं नाव भर कर कुछ सामान देता हूं, नाव भर कर आप उसको बेचो और धनिक बन जाओ, आपने बहुत सेवा की है मेरी, मैं आपको मुक्त कर रहा हूं। तो गुलाम प्रसन्न हो गए, अपने जमींदार को उन्होंने कृतज्ञता अर्पण कर ली और निकले समुद्र में नाव लेकर। सोचने लगे थे मैं बहुत कष्ट करूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका जो नाव है बीच समुद्र में तूफान के कारण डूब गया। वो भी डूबने वाले थे, लेकिन प्रयास करते करते अपने आप को बचा लिया। वो सोचने लगे कम से कम मुझे मालिक थे कुछ खाना देने के लिए, अब वो भी नहीं है, अब मैं तो सही में क्या हो गया, अनाथ बन गया, मेरी कैसी दुर्दशा हो गई। वो अपने आप को कोस रहा था, अपने कर्म को कोस रहा था, परंतु सामने से देखा बहुत बड़ा प्रोसेशन, क्या कहते हैं इसको, जुलूस आ रहा है, और लोग कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, हमारे नया राजा का जयघोष, सब लोग आ गए उसके सामने। वो देखता रहा, उसके आंखें, उसको लगा कि मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। एक हाथी था, उसमें कोई बैठे नहीं थे, और कई लोग मुकुट लेकर आ रहे हैं, और किनके हाथ में चामर है, मोर पीस है, वो आ गए, और इस गुलाम के सिर पर जिसके कपड़े भी नहीं थे क्योंकि पानी में डूब रहा था, आधा नंगा था, उसके सिर पर मुकुट रख दिया और उसको कहा कि आज से आप हमारे राजा हो, और उसको हाथी में बिठाया, राज्य में लेकर आया, उसका अभिषेक किया और उसको नाम दे दिया और उसको बताया वो देखा मैं क्या देख रहा हूं, मैं तो गुलाम था, फिर जमींदार ने मुझे मुक्त कर दिया, मेरा सारा सामान डूब गया, ऐसे ही मैं गिरा हुआ था, लेकिन अभी मैं राजा भी बन गया, ये कैसा है? ये कोई सपना तो नहीं है, देख रहा था वो सिंहासन असली में है, सब कुछ मुकुट असली में है। तो उसका मंत्री आ गया, फिर ने उसने उनको कंडीशन रखा, देखो अब मंत्री अब राजा हो लेकिन केवल एक साल के लिए, राजा के सारे सुविधा आपको मिल जाएंगे जो बाकी अन्य राजाओं को मिलते हैं, वैसे आपको भी मिलेगा, जो आप करना चाहते हो कर सकते हो, आपके पास सब पावर्स है, सारे शक्तियां है, लेकिन केवल एक साल के लिए। एक साल के बाद क्या होगा? आपको जाना होगा उस स्थान पर जहां आपके जैसे हजारों राजाओं के हड्डी गिरे हुए हैं, उधर पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए धान्य नहीं है, न तो पेड़ है, वहां केवल धूप है, और वहां भूखे प्यास के कारण गर्मी के कारण आपकी ऐसी हिंसा होगी, आपको मरना होगा, आप सोचो आपको क्या करना है। उसके अंदर एक चॉइस था, एक अवकाश था कि भोग करूं या दूसरा कुछ अन्य मार्ग करूं। वैसे ही हम देखते हैं कलयुग में हमारी आयु बहुत कम है, कोई गारंटी नहीं है। एक्चुअली शास्त्र में कहा गया है कलयुग का लक्षण क्या है, कलयुग का एक लक्षण है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं 100 साल जीऊंगा, कभी भी इस शरीर का स्पोर्ट हो जाएगा, कभी भी मर सकते हो, 20 साल 30 साल 35 साल 40 साल सब उल्टा सुलटा है। जो सारे नियमों का पालन करते हैं वो 40 साल जिएंगे, और सब शराब पीते हैं सब कुछ करते हैं और 90 साल भी जिएंगे। कोई ये नहीं कह सकता अरे मैं भक्त बना, सब नियमों का पालन किया लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो गया, ये कलयुग का स्वभाव। इसका मतलब ये नहीं कि शराब पीना अच्छा है, ये आगे जाकर उसको ठीक किया जाएगा। तो फिर उसको ये अवकाश दिया गया, अभी आप सोचो क्या करना है। जब ऐसे सुनाई मिलता, जैसे हमें सुनते हैं कि मेरी आयु कम है, अभी क्या कर लो, जितना कम आयु है उसमें जितना ज्यादा भोग हो सके उतना भोग करो। देखो कैसी बुद्धि विकृत है, आयु कम है इसलिए भोग ज्यादा करो। जैसे देवामृत स्वामी कहते हैं, वो कहते हैं आजकल हम लोगों को ऐसा प्रचार नहीं करते। क्या प्रचार नहीं करते? कि आगे जाकर आपको अगला जन्म है, अगला जन्म में आपको कुत्ता बनना पड़ेगा, बिल्ली बनना पड़ेगा, सुअर बनना पड़ेगा, जैसे आप कार्य करोगे वैसा शरीर मिलेगा। अगर ऐसा कहोगे तो आजकल के लोग क्या कहते हैं, क्योंकि मैं अगले जन्म में कुत्ता बनने वाला हूं इसी जन्म में भोग कर लूंगा, ऐसे लोग कहते हैं। विद्यार्थीगण वो कह रहे थे कि देखो शास्त्रों को कैसे उल्टा सुलटा घुमाकर, क्योंकि लक्ष्य भोग करना है वही करना चाहते हैं। तो अवकाश भगवान और शास्त्र में प्रदान करते हैं कैसे व्यवहार करना है। तो उस राजा को उस मंदिर ने कहा आपको डिसाइड करना है एक साल में क्या करना है। तो उस राजा ने क्या किया, वो सोचने लगे। उस जमींदार ने उसको अच्छा प्रशिक्षण दिया था, संस्कृति प्रदान की थी, कष्ट क्या वो जानते थे। वो सोचने लगे अगर मैं एक साल भोग लूं राजा के रूप में, लेकिन उसका लाभ क्या, एक साल देखते देखते चला जाएगा। जैसे लोग रिट्रीट के लिए जाते हैं, रिसोर्ट में जाते हैं, प्रतीक्षा करते रहते हैं कि 5 दिन में बहुत भोग लूंगा, लेकिन 5 दिन देखते देखते खत्म हो जाते, फिर से जाना पड़ता है उनको फैक्ट्री में काम करने के लिए। तो उसने सोचा कि मैं क्या करूं। तो परमात्मा ने उसको प्रेरणा दी, वो सोचने लगे इस एक साल में मैं बहुत कष्ट करूंगा, बहुत तपस्या करूंगा, और जो कुछ मेरे मुझे अधिकार मिला है, सुविधाएं है, उनको भोग न करते हुए उन सारे सुविधाओं को, उन सारे अधिकार को जहां मुझे भेजा जाएगा, जो निर्जन प्रदेश है उसको एक शहर बना दूंगा। उसने अपने सारे जो सेवक सैन्य, तो उसको कहा जाओ उधर कुआं खोदो, उधर पेड़ लगाओ, उधर सिटी बनाओ, क्योंकि उसके पास अधिकार था। तो यहां का सारा रिसोर्सेस उन्होंने उधर शिफ्ट कर दिया और दिन भर अपने नींद को भूल गया, बहुत कम सोता था। और एक साल होने के पहले वहां एक सुंदर शहर तैयार हो गया और जिसको गढ़ी पार किया जा गया उधर का जाकर वो राजा बन गया। तो ये कोई कहानी नहीं है, ये हमारी कहानी है। हमें मनुष्य शरीर मिला है और हम भी राजा शरीर के, और हमें भी एक साल के लिए अवकाश है। एक साल यानी कि 50 साल, 60 साल, 70 साल। अगर सोचते रहेंगे कि मेरी भी वही गति होगी, मुझे उसी राज्य में भेजा जाएगा स्मशान में, एक तो दफनाया जाएगा, जलाया जाएगा, फिर वो राख किसी नदी में चली जाएगी, हम देखते हैं। लेकिन सोचते नहीं कि कैसे ऐसा एक शहर में बनाओ, ऐसे एक राज्य में चला जाओ जहां से हमेशा के लिए मैं भोग करता रहूं। वो क्या है? भगवान का धाम है। ये स्थान है तपस्या करने के लिए, शास्त्रों के वचन सुनने के लिए, नियमों को पालन करने के लिए, भक्तों का संग करने के लिए। यहां भोग कम होगा, जब इन तपस्याओं को करने लगते हैं अपने आप भौतिक सुख कम हो जाता है। भौतिक सुख कम होने दो, लेकिन जो आध्यात्मिक सुख प्राप्त होगा उसकी कोई सीमा ही नहीं है। हम पिछली बार भी कहे थे, इंग्लिश में कहावत है, वर्किंग फॉर गॉड, भगवान के लिए काम करना तनख्वाह बहुत कम है, रेम्यूनरेशन इज वेरी लेस। जो तनख्वाह मिलता है ब्रह्मचारियों को, किसी को तनख्वाह नहीं है। काम करने, सेवा करने में, एक कमरे में हम जहां रहते हैं राधा गोपीनाथ मंदिर में, किसी ब्रह्मचारी के पास कमरा नहीं है। 110 लोग रहते हैं हम लोग, केवल दो तीन कमरे हैं, एक तीन कमरों में 110 लोग, फिर भी बहुत आनंद आता है। तो उनको तनख्वाह नहीं मिलता या बहुत कम तनख्वाह मिलता है कृष्ण को, कृष्ण की सेवा करने के लिए। वर्किंग फॉर गॉड रेम्यूनरेशन इज वेरी लेस, बट द रिटायरमेंट प्लान इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। समझ गए? आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मतलब यहां फिर से आना नहीं, भगवान के धाम में चले जाओगे। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड इंग्लिश में अगर कुछ ऐसा विशेष बात है उसको तब कहते हैं, ओ उसने क्या फोर मारा, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ऐसे विशेष बात। तो वैसे भगवान की सेवा करने से जो लाभ मिलता है उसकी तुलना इस वस्तुओं के साथ, इस भौतिक जगत की वस्तुओं के साथ नहीं किया जाता। इसलिए अपने जीवन में जब हम भक्ति करने लगते हैं या आध्यात्मिक जीवन में आ जाते हैं, एक तो किसी कारण के लिए हमारे वातावरण में कुछ बाधाएं आ जाती है, कुछ कष्ट आ जाता है, कुछ कठिनाई आ जाती है, थोड़ी जिज्ञासा आ जाती है, देखते हैं चलो क्या है, हरे कृष्ण वाले करते हैं क्या, ऐसी जिज्ञासा जब आती है तब हम मंदिर में आते हैं। और मंदिर में आकर जब प्रवचन सुनते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, हरिनाम के प्रति रुचि हो जाती है, जब करने लगते हैं क्योंकि अच्छा लग रहा है, क्योंकि कुछ नया भी है। कभी कभी लोग पूछते थे, आपके मंदिर में हमेशा नए लोग ही आते हैं, पुराने कहां चले गए? क्योंकि पुराने लोगों को ये पुराना हो गया, इसलिए वो नया ढूंढने के लिए चले गए। दे ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग न्यू। तो जब पहला आते हैं, पहली बार आ जाते हैं तब अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही करना, वही हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दूसरा कोई मंत्र नहीं है क्या? उसी मंत्र को रटते रहना। तो कई लोगों को ज्ञान न होने के कारण, रुचि जागृत न करने के कारण निरस हो जाता है, फिर बाहर से भटकने लगते हैं। तो इसलिए जो भक्तगण या जो आध्यात्मिक साधक है वो निष्ठा के साथ धीरे धीरे से इस मार्ग को अपनाने लगता है, तो फिर कितना ही कष्ट क्यों ना आए, वो अपने कन्विक्शन को, अपने डिटर्मिनेशन को, अपने दृढ़ता को जो त्याग नहीं करता, वो भगवान को इतने प्रसन्न कर देता है, फिर वो भगवान के धाम में जाने के लिए योग्य व्यक्ति बन जाता है। क्योंकि बाहर कृष्ण गीता में कहते
भोगेश्वर्य प्रसक्तानां त्वया अपहृत चेतसां, अपहृत यानी कि चोरी करना,
या कोई जैसे आपकी कोई संपत्ति है उसको अगर किसी ने हरण कर लिया आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके पास नहीं है। जैसे आपने मर्सिडीज गाड़ी ले लिया, आप चला रहे हो, मंदिर में लेकर आते हो तो कोई देख लेता है उसको, चाहे आपके हाथ में लेकिन गाड़ी उसके पास है, वो गाड़ी चोरी कर लेता है। आपके पास चाबी है लेकिन गाड़ी नहीं है, गाड़ी वो डुप्लीकेट चाबी से लेकर चला जाता है। तो वैसे ही त्वया अपहृत चेतसां, अपनी जो चेतना है, अपनी जो बुद्धि है, मन है, वो इधर ही है लेकिन उसको माया हरण कर लेती है, उसको भगा कर ले जाती है। तो ऐसे व्यक्ति जिसका मन बुद्धि चेतना जिसको माया ने हरण कर लिया है, उसके द्वारा व्यवसायत्मक बुद्धि, उसको भक्ति में एकाग्रता प्राप्त नहीं होता, मन भटकता रहता हमेशा। क्यों? उसकी बुद्धि को हरण कर लिया है। इसीलिए जो साधक है उसको जागृत रहना पड़ता है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि अपनी जो अपना जो मन है वो सबसे बड़ा चोर है, वो मित्र के समान बैठा हुआ है लेकिन वो अपना बड़ा शत्रु है। इसलिए वो कहा करते कि सुबह उठते ही इस मन को जूते से 100 बार मारो और रात के समय झाड़ू से 100 बार मारो, तभी सुधरेगा। यानी जबरदस्ती करो इसको। वो कहेगा भक्ति क्यों कर रहे हो, इतना साल आप मेरे सेवा कर रहे थे, अब क्या हो गया? कामादिना कतिना कतिना पालिना दुर्निदेशा। रूप गोस्वामी कहते हैं काम को, हे काम, मैंने आपकी इतनी सेवा की, मैंने आपका गुलाम बन गया, बिना तनख्वाह का काम करता रहा, तू मेरे को पीटता रहा लेकिन अभी तक तू संतुष्ट नहीं हुआ। अब मैं आपको राम राम कह रहा हूं, आपको मैं छोड़कर जो यदुपति है कृष्ण है उनकी सेवा करना चाहता हूं। लेकिन माया ऐसे छोड़ेगी नहीं, वो बहुत सारे प्रलोभन डालती रहेगी। इंद्रियों के जो विषय है, इंद्रियों के विषय इतने शक्तिशाली है, इतने प्रबल है। गीता में भगवान कहते हैं कि इतनी शक्तिशाली एक भी इंद्रिय इंद्रियों के विषय के प्रति आकर्षित हो गया तो क्या हो जाता है, बह जाता है। अगर कोई बद्रीनाथ गया हो, वहां जो मंदाकिनी है इतनी गर्जना से बहती हो, उसको देखकर डर आता है, और चेन्स लगे हुए हैं और लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, अंदर तो आप खुद ही नहीं मार सकते हो, अगर उधर नीचे आ गए होते आओगे कुदी मार दोगे तो फिर क्या होगा, हरिद्वार में आपकी हड्डी मिलेगी। इतने तेजी से गंगा बहती है, तो हमने देखा है लोग वो सड़ी को पकड़कर अपना जो मग है उसको पानी में डुबाते हैं, शॉक लग जाता है, इतना ठंड पानी और इतने जोर से बह रहा है। कितने बार लोग मग को छोड़ देते हैं, देखते देखते मग 1 किलोमीटर दूर चला जाता है। हमारे इंद्रिय वैसे ही है, मंदिर में बैठे हुए हैं, कीर्तन कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन गेट के बाहर जाते ही गंगा के धारा से ही ज्यादा इंद्रियों के विषय हमारे बुद्धि को देखते देखते इतने जोर से हरण कर लेते हैं, समझ में नहीं आता 50 साल चले गए मैं हरे कृष्ण मंदिर में आया था, कभी आया था हरिनाम किया था लेकिन 50 साल निकल गए, पूरा भूल गया। इसलिए यहां भगवान अर्जुन को बार बार उनको उपदेश कर रहे, लेकिन साथ साथ अर्जुन को भगवान क्या कर रहे, जबरदस्ती कर रहे हैं। ये अर्जुन का भाग्य है। इसलिए गुरु स्वीकार करना यानी कि क्या, गुरु यानी कि बहुत भारी। जब गुरु को स्वीकार कर लिया तो गुरु अपने सिर पर बैठ जाते हैं हमारे भलाई के लिए, बार बार कहते रहेंगे कि आप अपनी भक्ति ठीक से करो। एक तो माया का भूत बैठ जाएगा और उसका बोझा इतना भारी है और वो जन्म जन्मांतर हमारा पीछा रहे करता रहेगा, लेकिन गुरु का जो भोजा है वो जो भारी है वो किसके लिए बैठेंगे,
गार्ड करते रहेंगे, हमारी रक्षा करते रहेंगे, ताकि हमारे चित्त को अगर माया ने अपहरण कर लिया तो समाप्त हो गए। तो माया को अपहरण करने से वो रोकते हैं, इसलिए ऐसे गुरु की सेवा करने से, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेशांत ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिन। ये भारत का दुर्भाग्य है, जो आध्यात्मिक ज्ञान, इतना महान आध्यात्मिक ज्ञान है। आप जानते होंगे एक ब्रिटिश स्कॉलर भारत में आए, भारत जब परतंत्र था, वो केवल परतंत्र नहीं बनाना चाहते थे, वो पूरे हमारे संस्कृति को नाश करना चाहते, पूरा हमें वो ब्रिटिश बनाना चाहते थे। थोड़ा बना लिया, सुबह उठकर बैठी, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। कुत्तों को लेकर घूमना, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। आज बम्बई में चालू हो गया, अगर कुत्ता विष्ठा त्याग करेगा तो मालिक को वो विष्ठा उठाना पड़ता है। हम देखते हैं बाहर के शहरों में ऐसा होता है, यानी कि इमिटेशन करना, फर्स्ट क्लास वो क्या बन रहे, साहिब बनना चाहते हैं। और मंदिर और राम और कृष्ण के बारे में पूछो तो अगर जानकारी नहीं है, देखो मुझे हमारे इस भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, उसमें बड़ा आनंद होता है हमको। जस्ट यू हैव बिकम फर्स्ट क्लास डॉग, अमेरिकन डॉग और ब्रिटिश डॉग, तो भूलते जा रहे हैं। तो इसीलिए इतना सुंदर दिव्य ज्ञान यहां है, जब वो आए थे उन्होंने कहा ये लोगों को परिवर्तित कैसे कर सकते हैं, कैसे इनको फर्स्ट क्लास ब्रिटिशर्स बना पाएंगे हम लोग। वो आकर मराठी सीख लिए, तुकाराम महाराज के गाथा पढ़ लिया, और उन्होंने कहा जब तक ऐसे ग्रंथ रहेंगे आप उनको परिवर्तन नहीं कर पाओगे। ऐसे ग्रंथ हमारे देश में दिखाई नहीं देंगे, इतने डीप, इतना ज्ञान और इतना आकर्षित ग्रंथ है, जब तक ये रहेंगे तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अलग अलग चीज दिया जो हमारे नहीं है। अब हमारा क्रिकेट धर्म बन गया है। बॉम्बे में लिखते हैं क्रिकेट की पंडरी, और पंडरी को भूल गए। जब क्रिकेट पंडरी बन जाती है, सचिन तेंदुलकर भगवान बन जाता है, बोर्ड लिखा था बॉम्बे में ये दो वर्ल्ड कप के पहले, क्रिकेट इज अवर रिलीजन एंड सचिन इज अवर गॉड, तो क्या दुर्दशा नहीं होगी इस देश की, जहां एक साधारण गोमांस खाने वालों को भगवान बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, क्रिकेट को अपना धर्म बनाते हैं, तो कैसे प्रगति होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रिटिश लोगों ने क्या कर दिया भारत को, जैसे हिंदी में कहा होता है न घर का न घाट का, न आध्यात्मिक ज्ञान बचने दिया और न उनको पूरा भौतिक ज्ञान दिया। प्रभुपाद जी लिखते हैं दोनों तरफ से आध्यात्मिक ज्ञान को नाश कर दिया और पूरा भी भौतिक ज्ञान नहीं दिया। न तो भौतिक जीवन में प्रगति करो, न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करो। नीति शास्त्र में कहानी आती है, एक स्त्री अपने पति के प्रति जो चास्टिटी छोड़कर, उसके प्रति अपना प्रेम छोड़कर एक दूसरे व्यक्ति के प्रति उसका आकर्षण हो जाता है, उसके पीछे जाती है, और एक दिन दोनों मिलकर सोचते हैं कि जो भी संपत्ति है पति का उसको ले लेंगे। उसको उठाते हैं घर से, जब पति बाहर चले गए थे उसको सब उठा लेकर नदी के किनारे पे आते हैं। वो जो उसका प्रियकर होता है वो कहता है तुम इधर ही रुको, मैं नाव लेकर उस पल्ली पर चला जाऊंगा, वहां सब रख कर आपको लेकर चला जाऊंगा। वो कहता है तुम्हारे सारे कपड़े उतार दो, एक ही वस्त्र पहनो, ताकि कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए अगर आपका पति बीच में आ गया तो। तो सब निकाल कर देती है उसको, अपने सारे गहने सब कुछ देकर वो खड़ी हो जाती है, और ये सब सामान लेकर नदी को पार कर देता है। उसकी प्रतीक्षा कर रही है, मेरा देवता आ जाएगा मुझे ले जाने के लिए, मेरे पति से बचाने के लिए। वो आता ही नहीं है, प्रतीक्षा कर रही है, उस समय कुत्ता आ जाता है उधर। नीति में कहा गया, नीति शास्त्र में, कुत्ता आ जाता है
और कुत्ते के मुंह में हड्डी होती है, वो प्रतिबिंब को देखकर वो कुत्ता भूखने लगता है जोर जोर से, फिर उसकी हड्डी नदी में चली जाती है, उसको देखकर वो जोर जोर से हंसने लगती है, कितना मूर्ख है। तो भूख रहा है पानी के अंदर, ये स्वाभाविक है हड्डी गिर जाएगा, तो कुत्ता भी आश्चर्य से, तो बड़ी आश्चर्य की बात है, वो भी बोलने लगता है तू तो मेरे से बढ़कर मूर्ख है, मेरा तो केवल हड्डी चला गया, तेरा पति भी चला गया, तेरा सब कुछ चला गया। ये भारत के लोगों की ऐसी गति है। वेद शास्त्र अपना धर्म वो पति के समान है, कृष्ण हमारे पति है, उसको छोड़कर हम अंधे होकर उसका अनुकरण कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, बोले ये भी निकालो, वो भी निकालो, इसको भी छोड़ दो, उसको भी छोड़ दो, और नदी के किनारे पर लेकर आएंगे, सब लेकर चले जाएंगे, हमने कृष्ण को छोड़ दिया है। लेकिन कृष्ण ऐसे भगवान है, यहां के पति अगर ऐसे कोई पत्नी करेगी तो उसके साथ संबंध छोड़ देगा, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। कृष्ण फिर से एक बार बुलाएंगे, वापस आ जाओ, आपको मैं और एक अवकाश प्रदान करूंगा। गीता में अर्जुन आगे भगवान अर्जुन को कहेंगे, अगर अर्जुन आपने जो कुछ मुझे मैंने आपको कहा है अगर समझ नहीं पाए हो, फिर से एक बार मैं बोलने के लिए तैयार हूं। देखो एक लेक्चर देने के बाद लोग पैसा लेते हैं, 400 रुपए 500 रुपए, आजकल प्रोफेसर लोग एक प्रवचन के लिए पैसा लेते हैं, एक लेक्चर के लिए, 1 lecture 1000 rupees उनके योग्यता के अनुसार। तो यहां कृष्ण राज्य विद्या प्रदान कर रहे हैं अर्जुन को और कोई फीस नहीं लिया, बल्कि दया के कारण वो कह रहे हैं कि अर्जुन आपने समझा नहीं तो फिर से एक बार आपको मैं सुनाऊंगा, बार बार सुनाने के लिए तैयार हूं। क्या आपने समझ लिया सब कुछ? ये भगवान की दया है। हम भगवान से विमुख हो गए, खास करके भारतीय लोग, और अहंकार लेते हैं। एक बार यहां कपिलेश्वर मंदिर के सामने एक फॉरेन के डिवोटी प्रवचन कर रहे थे, लेक्चर दे रहे थे, और लेक्चर के बाद उन्होंने प्रश्न पूछा, एक विद्यार्थी खड़ा हो गया जींस पैंट टी शर्ट पहन के, उसको लग रहा था कि मैं तो अमेरिकन ही लगता हूं, तो इंग्लिश में प्रश्न किया उसने, उसने प्रश्न किया, प्रश्न ऐसा किया कि डज गॉड एग्जिस्ट। वो जो स्वामी थे वो इतने भड़क गए, बोले यू इंडियन, तेरे मुख से ऐसा प्रश्न, तुमको कोई शर्म नाम की चीज नहीं है, हाउ कैन यू एवर आस्क दिस क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न कैसे कर सकते हो, आपके संस्कृति में आपके खून में केवल धर्म ही बहता रहता है, और ऐसे पैशन के रूप में कैसे प्रश्न कर सकते हो, हाउ कुड यू डेयर टू आस्क सच क्वेश्चन। उसने ऐसी अपेक्षा नहीं की थी कि ऐसा उत्तर रहेगा, उसने बोला हरे कृष्ण, बैठ गया फिर। तो इसीलिए अगर हम गौर से इन शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, और भार का जो प्रभाव है वो हमें जाना होगा भार, लेकिन हाथ में सड़ी रहेगा जो चेन, अगर आप मंदाकिनी में जाओगे जो उस चेन को पकड़कर उस जो मग है उसको बलिष्ठ को पकड़कर अगर पानी उठाएगा तो फिर अच्छा से स्नान कर सकता है, क्योंकि वो जागृत है, चेन भी पकड़ लिया है, वो मग भी अब उसके मुष्टि में टाइटली फिट है, तो फिर आराम से स्नान कर सकेगा। अगेन चैन भी लूज है, ये भी लूज है, तो क्या होगा, वो बह जाएगा। इसलिए निर्बंध जो नियम है, राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरण आत्म विषय विधियात्म प्रसादी मध्य गच्छति। दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि भक्ति के जो नियमों का पालन करने से, प्रभुपाद जी ने कहा करते थे कि दी रेगुलेटरी प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, जो नियमों का पालन करने से हम स्वतंत्र बन जाएंगे, स्वतंत्र बनने से माया के चंगुले में फंस जाएंगे, लेकिन भगवान के निर्बंधों का पालन करने से क्या होगा, हम मुक्त हो जाएंगे। जैसे एक भक्त अमेरिका में कारागृह में प्रचार करते हैं, जेल में प्रचार करते हैं। अभी कारागृह क्या स्थान है, वहां जीवों के जो बंदी है उनके जो मूवमेंट्स उनको रुकावट डाला हुआ है। जो खाने को मिलता वही खाना होगा, 6x6 उसी स्थान पर सब कुछ करना होगा। उनके सारे मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ क्रिमिनल एक्ट किया है। लेकिन ऐसे स्थान में रहकर, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लेटर्स हैं एक कारागृह के जो प्रिजनर्स ने लिखा हुआ, वो क्या लेटर लिखते हैं, वो कहते कि यहां रहकर जो हम अनुभव कर रहे हैं स्वतंत्रता का, फ्रीडम का, हमने बाहर कभी उसका अनुभव नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमें यहां रहते हुए श्रील प्रभुपाद जी की किताब मिले, हरिनाम मिल गया, हरिनाम का हमने जप किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हरिनाम का जप किया, तो इसी कारण हम समझते कि हमारा भाग्य है। जैसे हरिदास ठाकुर उनको बंदी बनाकर नवाब के पास लेकर आए थे, तो सारे कारागृह में रहने वाले जो बंदी है वो देखना चाहते थे हरिदास ठाकुर को। वैष्णव का दर्शन होते ही हम मुक्त हो जाते हैं, ये सब देखना चाहते थे, इतने आतुर थे उनको देखने के लिए। जब हरिदास ठाकुर वहां से गुजर रहे थे, निकल रहे थे, तो सारे जो बंदी है उन्होंने उनको प्रणाम किया। हरिदास ठाकुर ने देखा उनकी नम्रता, उनके अंदर जो जो तीव्रता थी संतों का दर्शन करने के लिए। हरिदास ठाकुर ने क्या कहा कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप ऐसे ही रहो, जैसे आज हो वैसे रह जाओ। वो लोग डर गए, हम कारागृह में रह रहे और हरिदास ठाकुर ऐसा आशीर्वाद दे रहे कि अब हमेशा वैसे ही रहो। तो उन्होंने कहा, हरिदास हम आपसे ये आशीर्वाद नहीं मांग रहे, आपने क्यों हमारे साथ ऐसा किया। हरिदास ठाकुर ने कहा, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप जेल में रहो, कारागृह में रहो, बल्कि आपकी जो चेतना है, आपकी जो भावना है, वो वैसा का वैसे ही रहने दो। इस परिस्थिति के कारण आपकी भावना ऐसी हो गई और इस भावना को जागृत रखो, वैसे रखो, ये खो नहीं जाना चाहिए। गौड़िया सिद्धांत, जो वैष्णव सिद्धांत, जो भगवद गीता का जो ज्ञान है, वो क्या सिखाता है? हमारे मन को परिवर्तन करना, हमारे हृदय को परिवर्तन करना। भयंकर जो स्थिति है, आप कितना ही प्रयास करो बदलने के लिए, वो बदलेगा नहीं। आपको थोड़ा अच्छा लगेगा कि बेलगम कर्नाटक का सेकंड राजधानी बन जाएगा, सारे बेलगम वासियों को अच्छा लगेगा, लेकिन आप वैसे के वैसे रह जाओगे, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। आप जाके बेंगलुरु में पूछो, बॉम्बे में पूछो, उनकी राजधानी है, लेकिन वो तो राजा नहीं है, वो तो भिखारी है, उनको वही कष्ट करना पड़ता है। जब तक अंदर से परिवर्तन नहीं होगा, तब तक बाहर का परिवर्तन से कोई लाभ नहीं है। इसलिए वासुदेव, जिसको कोड़ी हुई थी, कुष्ठ रोग हुआ था, उसकी भावना क्या थी? जब उसके शरीर से कीड़े गिर जाते थे, वो कहता था, अब ये शरीर मेरे भोग के लिए योग्य नहीं है, मैं इसको भोग नहीं कर सकता, कैसे भोग करो, लेकिन आप कम से कम इसका भोग करो। और जो गिरे हुए कीड़े हैं उनको उठाकर अपने शरीर में वापस रख देते, क्योंकि मैं भोग नहीं कर सकता। और नियमित रूप से भगवान का नाम कीर्तन कर रहे थे, यानी कि उनको कुष्ठ रोग होने पर भी उनकी चेतना कैसी थी? वैकुंठ की चेतना थी। और समझते कि हमारा शरीर स्वर्गीय शरीर है, इसलिए आईने के सामने लोग कितना खड़े होते हैं, पहला उनका अल्टर क्या, उठते ही आईने के सामने। आजकल तो आईने आईने के दीवार बन जाते हैं, सोते समय अपना ही दर्शन करना, उठने के बाद आंखों में इतना सारा गंदा मल जमा हुआ है उसी का ही दर्शन करना, इसलिए उसको दर्पण कहा गया है। दर्पण यानी कि क्या? दर्पण यानी कि दर्प, अहंकार को दर्शाने वाला। दर्पण यानी कि आपका जो अहंकार है उसके सामने खड़े होते ही आपको लगता है कि मैं स्वयं भगवान ही हूं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के आईने आए हुए हैं। तो फिर जब क्या कह रहा था, हाँ वासुदेव जो
वो निकाल कर फेंकता था,
लेकिन उसकी चेतना क्या थी? वैकुंठ की चेतना थी। शारीरिक क्लेश उसको क्लेश नहीं दे रहे थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत प्रवास करते हुए उस कुर्म ब्राह्मण के घर में आए, उसको प्रवचन दिया। कुर्म ब्राह्मण महाप्रभु के पीछे जाना चाहता था कि मैं सब छोड़कर आपके पीछे आऊंगा। श्री चैतन्य देव ने कहा उसकी जरूरत नहीं है, घर में रहो, घर में रहते हुए अपने घर को ही आश्रम बनाओ। गृहे ठाको वने ठाको सदा हरि बोले ठाको। श्री चैतन्य देव ने कहा घर में रहो और जहां कहीं जिनको आप मिलोगे, यार देखो तार तो कहो कृष्ण उपदेश, कि जो कोई आपको मिलेगा उसको कृष्ण के बारे में समझाओ। ऐसे करने से क्या होगा? पुनरपि यही थाने पावे मोर संग, कि इसी स्थान पर आपको फिर से मेरा दर्शन होगा। तो कुर्म ब्राह्मण रख गए अपने घर पे, महाप्रभु आगे चले गए। और ये वासुदेव जो कुष्ठ रोग हुआ था उसको समझ में आ गया कि महाप्रभु आए थे। वो अपने आप को कोसने लगा कि मैं कितना दुर्दयी हूं, मैं महाप्रभु को देख नहीं पाया। श्री चैतन्य देव परमात्मा है, वे वापस आ गए। और वापस आकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उस जो कुष्ठ रोगी है उसको जाकर गले लगाया, उसको आलिंगन किया। महाप्रभु के शरीर का स्पर्श होते ही वो जो वासुदेव था उसका शरीर अमृत पद बन गया, वो दिव्य बन गया। जो स्वर्गवासी है गंधर्व है उनसे ही बढ़कर वो कांति से चमकने लगा। सोचो जो 70 साल का बूढ़ा है, सब कुछ भोग कर चुका हुआ है, या कोई वृद्ध स्त्री है, या जिनका अच्छा रूप नहीं है, अगर जिनका रूप अच्छा है फिर भी सोचते और थोड़ा अच्छा होगा तो अच्छा रहेगा, अगर ऐसे लोगों को ऐसा शरीर मिल जाएगा तो क्या होगा, भगवान को भूल जाएंगे तुरंत, अपने देखते रहेंगे अपने आप को मैं कितना सुंदर बन गया। तो श्री चैतन्य देव ने इस कुष्ठ कोड़ी को शरीर परिवर्तित कर दिया, वो चमकने लगा। तो उसकी भावना क्या हो गई, वासुदेव कहता कि आपने क्या किया, हे महाप्रभु ने मेरे से क्या कर दिया, मैं मेरा शरीर इस रोग के कारण जर्जरित था, लेकिन मेरी भावना, मैं प्रयास कर रहा था कि हमेशा भगवान का चिंतन करे, लेकिन आपने शरीर को ठीक कर दिया, ये चमक रहा है। अब लोग क्या सोचेंगे कि इसको देखो विशेष कृपा हो गई, लोग मेरी स्तुति करने लगेंगे, मुझे भी ज्यादा अटेंशन मिलेगा। और वो रोग है, लोगों को अटेंशन मिलना, ये रोग इस कोड़ी रोग से ही बढ़कर है, मुझे इससे बचा। ऐसी भावना उनकी थी। श्री चैतन्य देव ने कहा उसकी चिंता मत करो, आप नियमित मेरा चिंतन करते रहो, आप इस रोग से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। ये आध्यात्मिक संस्कृति है, दुख आते रहेंगे, कष्ट आते रहेंगे, लेकिन केवल इन कष्टों को मिटाने के लिए अगर हम मंदिर आते हैं, साधुओं के पास जाते हैं, और अगर कोई साधु इन कष्टों को मिटा देता है, फिर वो आपका मित्र न होकर आपका वो शत्रु है, क्योंकि साधु का लक्षण नहीं है। अगर साधु केवल भौतिक सुखों को प्रदान कर रहे हैं और आपको भगवान को भुला रहे हैं, वो साधु नहीं, वो असाधु है। कुंती पांडवों की माता, पांडवों का परिवार ऐसा परिवार है, सबके जीवन में कष्ट, पांडवों के जीवन में कष्ट, कुंती के जीवन में कष्ट, द्रौपदी के जीवन में कष्ट, परीक्षित महाराज के जीवन में कष्ट, अभिमन्यु की पत्नी बन गई बाहर की उत्तरा, उसके जीवन में कष्ट। कोई सोचेगा कैसा परिवार है, कृष्ण के भक्त है लेकिन फिर भी इतना सारा कष्ट। लेकिन वो कष्ट में जो आनंद लेते हैं वो पांडव, भगवान का इतना चिंतन करते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि हे कृष्ण, ये पांडव कैसे है? अगर कोई तुलना करेगा, आप अपने कष्ट को लेकर पांडव के कष्ट के साथ तुलना करो, आपका कष्ट कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। राजा होकर 14 साल वनवास में उनको बिताना पड़ा, हर समय उनको लोग मारना चाहते थे। नारद मुनि कहते कि ऐसे अवस्था में भी उनकी निष्ठा आपके प्रति इतना ही कम नहीं हुआ, बल्कि वो बढ़ता गया। ले ये असली भक्त है। इसलिए भागवत या भगवत गीता केवल पांडवों के कारण ही प्रकाशित हुआ है। तो इसलिए इन सिद्धांतों को जानकर, गीता और भागवत का सिद्धांतों को जानते हुए और साथ साथ अपने जीवन में निर्बंध लगाकर जब हम भक्ति करेंगे, तो फिर बाहर के जो प्रलोभन है, जो माया का प्रलोभन है, टेलीविजन, इंटरनेट, क्रिकेट, गोवा बहुत निकट है, ये हमें ये प्रलोभन रहने पर भी, क्योंकि निष्ठा स्ट्रांग होने के कारण, उदाहरण दिया जाता है जो पहले जो चक्की होती थी पीसने के लिए, गेहूं पीसने के लिए या चावल पीसने के लिए, दो पत्थर के बीच में हमने देखा है, इसलिए पुराने स्त्रियों को कभी हार्ट अटैक नहीं होता था, क्योंकि वो पीसते रहते थे, हमेशा आटा पीसते रहते थे। तो फिर पीसने के कारण वो आटा फाइन हो जाता है। तो एक आचार्य कहते हैं कि भौतिक प्रकृति एक चक्की के समान है, और उसका यह कर्तव्य है कि जीवन को उस छिद्र से डालना और उनको पीसते रहना त्रिताप के द्वारा, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, इन ताप के द्वारा वो पीसते रहती है, फिर हमारा आटा बनता रहता है, फिर वो फेंकते रहते हैं बाहर दुर्गा। लेकिन अगर भाग्यवश कोई वो जो आटा पीसते समय अगर कोई धान्य बराबर बीच में उस लकड़ी के बाजू में आश्रय लेगा तो पिसा नहीं जाता, आपने देखा होगा। इसलिए वो पत्थर को उठाकर वो क्या करते, धान्य को बीच में घुसा देते ताकि वो भी पिस जाए। तो वैसे ही आचार्य कहते कि वो अगर उसी प्रकार से भौतिक प्रकृति है, सब जगह से सबको पीस रही है, लेकिन वो दंडा है वो कृष्ण के चरण के समान है। अगर उस चरण को पकड़ लिया तो चक्की को अगर इलेक्ट्रिसिटी से भी घुमा, हाथ से छोड़ दो, इलेक्ट्रिसिटी से और तेजी से घुमाएगा, फिर भी क्या होगा, वो पिसेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने उस लकड़ी का आश्रय लिया हुआ है। तो वैसे भौतिक प्रकृति यहां हमें पीस रही है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक क्लेश के कारण, लेकिन यहां दंडा है, राधा गोकुलानंद का दंडा है, प्रभुपाद जी का दंडा है, और उनके चरणों में आकर खड़े हो जाएंगे तो बेलगम पीसता रहेगा, माया प्रकृति पीस रही है, लेकिन हम आटा नहीं बनेंगे, बल्कि हम गेहूं वैसा के वैसे रह जाएंगे। तो इसलिए इस आध्यात्मिक मार्ग को ज्ञान के द्वारा जानकर, गीता और भागवत के द्वारा जानकर, भक्तों का संग करते हुए, इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब क्या होगा, उससे हमारी जो चेतना है उसे माया कभी हरण नहीं करेगी। हमारी चेतना, हमारी बुद्धि, हमारा मन वो वृंदावन बन जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के समय वो राधा रानी के भाव में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कृष्ण, आप केवल वृंदावन में निवास करते हो तो मेरा मन वृंदावन है, और मेरा मन वृंदावन होने के कारण कृपा करके इस वृंदावन में प्रवेश कीजिए। अपना मन क्या है, अपना मन दूसरा कोई जंगल है, जहां जंगली जानवर निवास करते हैं, वहां सांप है, बिच्छू है, शेर है, सिंह है, अलग अलग प्रकार के जानवर निवास कर रहे हैं, और वो बाहर के प्राणियों की हत्या नहीं करते, हमको ही मार रहे, हमको ही खा रहे। तो इस अरण्य को क्या करना है, इस साधारण जंगल को निकालकर उसको वृंदावन बनाना है। जैसे हम देख रहे गोकुल धाम, वो एक जंगल था, अभी भी जंगल है, और वहां हाथी भ्रमण करते हैं, कभी कभी ऐसे जंगली जानवर आ जाते हैं, वो जंगल है। वहां कोई सेन जो बुद्धिमान लोग वहां निवास नहीं करना चाहेंगे, केवल हरे कृष्ण के भक्त लोग ही करते हैं। क्यों? क्योंकि उस जंगल को वृंदावन बनाना चाह रहे हैं और वृंदावन बन रहा है। वहां हरे कृष्ण मंदिर का कीर्तन कर रहे हैं, विग्रहों की सेवा कर रहे हैं, भगवान के लिए धान्य बना रहे। तो देखते देखते वो साधारण जंगल क्या होगा, वो वृंदावन बन जाएगा। और यही अपना लक्ष्य है, हमारे जंगली जो व्यवहार है, जंगली जो गुण है, उसके जो पेड़ आए हुए हैं, उन पेड़ को क्या करना है, आध्यात्मिक गुणों के द्वारा उनको वृंदावन बनाना है, ताकि कृष्ण हमेशा के लिए निवास करे। इसलिए भागवत के 8-9 स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, रामचंद्र जी जब अयोध्या वापस जा रहे थे अपने धाम, गोलोक की ओर प्रस्थान कर रहे थे, वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर रहे थे, वो कहते रामचंद्र जी ने क्या किया, उन चरणों पर जो भक्तगण ध्यान करते थे, जो चरण जो दंडकारण्य के जंगल में, चित्रकूट के जंगल में बिना जूतों के भ्रमण कर रहे थे, और भक्तगण सोचते थे कि कितना कष्ट उठा रहे हमारे भगवान, उनको कंटक और छोटे छोटे से पत्थर उनको कष्ट दे रहे, ऐसा बार बार चिंतन करते हुए भक्तगण भगवान रामचंद्र जी के चरणों के बारे में सोच रहे थे। तो भगवान ने क्या किया, ऐसे भक्तों के हृदय में उन चरणों को प्रतिष्ठापित करते हुए अपने धाम चले गए। तो इसीलिए कृष्ण या राम अपने धाम में गए हुए, लेकिन उनके चरण इधर ही है। अगर इन चरणों को हम प्रतिष्ठापित करेंगे, डीटी इंस्टॉलेशन किया जाता है, अगर इन चरणों को इंस्टॉल करेंगे, प्रतिष्ठापित करेंगे, ये जो अभय चरण है, जो अभय प्रदान करने वाले चरण, हमें ऐसे वातावरणों से जो माया से दूषित है, इंद्रियों के विषयों से दूषित है, वो क्या करेंगे, हमको बचा सकते हैं। और चरणों को कैसे प्रतिष्ठापित कर सकते हैं, श्री चैतन्य देव ने कहा है, बहुत आसान है, भागवत के द्वारा, तीर्थों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, विग्रहों के द्वारा और हरे नाम के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हम भगवान के इन चरणों को हृदय में रखते हुए जब प्रस्थान का समय आ जाता है, तब इस हरे नाम को लेकर हमारा जो राज्य, यहां से हम तैयारी कर रहे हैं, यहां बैठकर वहां की तैयारी कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने एक कॉन्ट्रैक्टर थे बॉम्बे में, वो मंदिर बनाने के लिए मदद कर रहे थे, और बहुत कठिनाई आ रही थी, बहुत सारे लोग उनको रोकना चाहते थे, इधर मंदिर मत बनाओ, ये न्यूसेंस है, ये अशांति पैदा करती है, देखो मंदिर बनाना अशांति है, बियर बार बनाने के लिए अनुमति है, शराब अड्डे बनाने के लिए अनुमति है, और वो पीस क्रिएट करते हैं, ये दुर्भाग्य है भारतीय लोगों का। तो प्रभुपाद जी इतने क्रोधित हो गए, बोले हम आपके लिए मंदिर बना रहे हैं, हमारे लिए नहीं, हमारे पास 108 मंदिर है, अगर आप इधर नहीं दोगे तो हम दूसरे जगह में बनाओगे, हमारा क्या बिगड़ता है, प्रवचन है प्रभुपाद जी का हिंदी में। तो ये डिवोटी एक कॉन्ट्रैक्टर थे, वो मंदिर बना रहे थे, और बहुत सारे गुंडे लोग रोकना चाहते थे, मंदिर तोड़ना चाहते थे, अरे पंजाबी क्षत्रिय है, उन्होंने कहा ठीक है आने दो गुंडों को, मैं और मेरा पुत्र खड़ा हो जाऊंगा, देखता है कौन गिरा था। तो रुक गए रात भर, उनके वर्कर्स लोग काम कर रहे थे मंदिर बनाने के लिए, भक्तों के लिए और भगवान के लिए। और जब कई कमरे बन गए, प्रभुपाद जी इतने संतुष्ट हो गए, उन्होंने कहा जैसे आप यहां अपने प्राणों को निछावर रखते हुए यहां मंदिर या कमरा बना रहे थे, उसी समय भगवान भी वहां आपके लिए घर बना रहे थे, ही इज मेकिंग हाउस फॉर यू देयर। ये भगवान ऐसे प्रतिसाद करते हैं, आप यहां कृष्ण के लिए ऑल्टर बनाओ अपने घर में, सुंदर उनके लिए जगह बनाओ, कितना बड़ा जगह बना पाओगे आप, आपका घर कितना बड़ा है, लेकिन जितना भी बना सकते हो उससे हजारों गुना बड़ा ऑल्टर भगवान आपके लिए वहां बना रहे हैं। एक कृष्ण इस प्रकार से भक्तों के साथ प्रतिसाद करते हैं, चैतन्य चरितामृत में है। कविराज गोस्वामी कहते हैं कृष्ण का एक ही ड्यूटी है, एक ही कर्तव्य है, वो क्या है, अपने भक्तों की सेवा करना। नहीं तो ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी कृष्ण हैज, वो हमेशा अपने भक्तों की सेवा करते रहते। तो चलो इस पर्दा चालू हो जाए, हम उनके लिए सेवा करेंगे और वो हमारे लिए सेवा करेंगे, और कौन जीत जाएगा, कृष्ण जीत जाएंगे। और जब कृष्ण जीत जाएंगे तो हमारी भला हो जाएगी, हमारी भलाई हो जाएगी, हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा गोकुल नंद भगवान की।
कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Yeah.
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा کرشنا ہرے 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 راما ہرے راما 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 ہرے 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 کرشنا 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 ہرے 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 راما ہرے راما 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 ہرے ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے 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 راما ہرے راما 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 ہرے 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 رام ہرے رام 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 ہرے ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے ہرے رام ہرے رام 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 ہرے 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 رام 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 ہرے کرشنا ہرے کرشنا کرشنا ہرے 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 رام ہرے رام 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 ہرے 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 کرشنا 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 ہرے 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 رام ہرے رام 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 ہرے 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 کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے 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 رام ہرے رام 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 ہرے 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 کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے 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 رام ہرے رام 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 ہرے ہرے कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे hare krishna hare krishna 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 hare 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 namo hare namo ram ram hare 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 krishna hare krishna 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 hare 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 ram 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 hare 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 krishna hare krishna 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 hare 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 ram ram hare hare krishna 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 hare 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 ram hare ram 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 hare 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 krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram 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 hare 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 krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram ram ram